इन पिछले अध्याय में आपने देखा कि ज़ोया और अयान शादी करने पर सहमत हुए। इस अध्याय में मानवी के साथ रुचिका और रीना बातें करती हैं और अवनी भी उनके साथ आती है। अयान के कमरे में वेद, सुधीर और गौतम अयान से बात करते हैं और अयान अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। नाउ नेक्स्ट, सुधीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों सच में बहुत अच्छे दोस्त हो, वरना आजकल दोस्ती कितने साल तक चलती है? अक्सर लोग कॉलेज से निकलने के बाद तो एक दूसरे को भूल ही जाते हैं। असल में सुधीर वेद के बारे में बहुत गहराई से नहीं जानता था, क्योंकि वो 5 साल पहले विदेश चला गया था और इतने सालों के बाद लौटा था। उसे इतना ही पता था कि वेद और अयान कॉलेज के दोस्त हैं और उनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, मगर वो ये नहीं जानता था कि इन दोनों की दोस्ती सिर्फ कॉलेज की दोस्ती नहीं बल्कि दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, जिसमें बहुत प्यार और समझदारी छुपी हुई है। वेद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। पिछले 5 साल ऐसे बीते जब हम दोनों का संपर्क लगभग टूट ही गया था। कभी साल में 1-2 बार मिल पाते, कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी, मगर अब मुझे लगता है कि हमें अपनी दोस्ती को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए। आखिर असली दोस्ती वही होती है जो समय और दूरी के बावजूद भी दिलों में जिंदा रहती है। असल में वेद के विदेश चले जाने की वजह से उसके कई रिश्तों में दूरी आ गई थी। पुराने दोस्त उससे कटने लगे थे और वो भी अपनी दुनिया में खो गया था। अब जब लौटा तो उसे एहसास हो रहा था कि जिन रिश्तों को उसने हल्के में लिया था वे कितने कीमती थे। अयान ने आगे कहा, तुम्हें पता है जब तुम विदेश में था तो अक्सर अपने आप से ही लड़ता रहता था। मैं अपनी ही गलतियों में उलझा हुआ था। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बर्बाद किया। बड़े भाई भाभी के साथ गलत बोलना, मॉम और डैड से रूखेपन से पेश आना, यहाँ तक कि ज़ोया तक से क्या क्या नहीं कहा, कभी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है काश मैं उस वक्त समझदारी दिखाता। आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि एक सिंपल सी ज़िंदगी जीऊँ जिसमें सिर्फ ज़ोया हो और हमारे घर में छोटी सी अवनी जैसी बेटी हो जो बिल्कुल ज़ोया जैसी दिखे। साथ में बिजनेस को आगे बढ़ाना है और एक जिम्मेदार इंसान बनना है। अयान की बात सुनकर सुधीर और गौतम जो वहीं बैठे थे चुप हो गए। वेद ने कहा, क्या क्या सोचने लगे हो यार, वैसे ही अगर आर्यन भी यहाँ होता तो कितना अच्छा होता, तीनों मिलकर कितनी मस्ती करते। अयान हंस पड़ा और बोला, तुम जानते हो ना, मस्ती करना तो उसे कभी पसंद ही नहीं था। हम सब में वही सबसे अलग था, मगर अच्छा तो उसके साथ नहीं हुआ। जिस लड़की से उसने प्यार किया, जिससे शादी की और फिर तलाक हो गया, पहले ही वो सीरियस था, अब तो और भी सीरियस हो गया है। क्या वो शादी पर आ रहा है? अगर वो आ जाए तो अच्छा है, तीनों दोस्त के साथ मिलकर मस्ती करेंगे। अयान ने कहा, मैं उसे फ़ोन करूंगा कि शादी पर आना है तो आना ही पड़ेगा। वेद कहने लगा, आप किसकी बात कर रहे हैं? सुधीर ने उत्सुकता से पूछा। वेद ने गंभीर स्वर में कहा, हम दोनों का तीसरा दोस्त, आर्यन राजवंश। हम तीनों कॉलेज में जिगरी दोस्त थे। सुधीर चौंक गया, आर्यन राजवंश, वही राजवंश इंडस्ट्रीज का वारिस? हाँ वही, वेद ने सिर हिलाते हुए कहा। असल में हमारी दोस्ती कॉलेज से ही है। बाहर से भले ही वो अलग दिखता हो, मगर दिल से वो भी हमारे जितना ही जुड़ा हुआ है। हम तीनों ने मिलकर क्या क्या शरारत नहीं की। सुधीर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। आप तीनों की दोस्ती वाकई गहरी है। मुझे सच में अच्छा लग रहा है कि मैं आप सबके बीच हूँ। इसी बीच गौतम ने बातचीत को बीच में काटते हुए कहा, हाँ लेकिन पहले ये देखो, इस डॉक्यूमेंट पर मैडम के साइन चाहिए, और हाँ आप दोनों के भी। दूसरी तरफ ज़ोया और सारा एक कमरे में बैठी थीं। सारा सोफे पर बैठी हुई थी और ज़ोया खामोश होकर खिड़की की ओर देख रही थी। सारा पास आई और बोली, क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? 2-3 बार पूछ चुकी हूँ लेकिन आप जवाब ही नहीं दे रही। सच बताइए, क्या दिक्कत है? आपकी आंखों से साफ लग रहा है कि आप बहुत गहरी सोच में हैं। ज़ोया ने लंबी सांस छोड़ी और बोली, तुम्हारे चाचू की वजह से परेशान हूँ। कभी कभी सोचती हूँ काश उस एक्सीडेंट में तुम्हारे चाचू अपनी याददाश्त खो देते और भूल जाते कि मैं कौन हूँ। ज़ोया चौंक गई, क्या किया चाचू ने आपके साथ? कहीं उन्होंने आपको अकेले में किस तो नहीं कर लिया? लगता तो मुझे ऐसा ही है, सारा कुछ और ही सोचने लगी थी। ज़ोया ने गुस्से से आंखें तरेरीं लेकिन कुछ बोली नहीं। सारा का दिमाग और भी अजीब दिशा में भागा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के बीच कुछ, मेरा मतलब चाचू तो आखिर चाचू ही हैं, आजकल वो आपके दीवाने बने हुए हैं और आप दोनों का निकाह भी हो चुका है, तो आप दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है। बस, ज़ोया ने झुंझला कर कहा, अपना दिमाग ज़्यादा मत दौड़ाओ, इस ख़ानदान में किसी का दिमाग सीधा चलता ही कहाँ है। अगर आप बताएंगी ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप परेशान क्यों हैं? सारा ने मासूमियत से पूछा। ज़ोया ने धीरे से कहा, तुम्हारे चाचू मेरी रुखसती करना चाहते हैं। अरे इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है, जब निकाह हो चुका है तो रुखसती भी होगी ही, आप इतना स्ट्रेस क्यों कर रही हैं? और अगर आप नहीं चाहती तो तलाक ले सकती हैं, पहले भी तो ये बात चल चुकी थी। ज़ोया की आंखें नम हो गई। तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे चाचू ने जब मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैंने उनके सामने शर्त रख दी थी। मुझे लगा वो कभी मानेंगे ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि अगर उन्हें रुखसती करनी है तो पहले वादा करना होगा। वो ऑफिस के काम पर ही ध्यान देंगे, किसी से बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, किसी भी लड़की के साथ नजर नहीं आएंगे, अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स और दोस्तों से रिश्ता तोड़ देंगे। मुझे लगा वो सब सुनकर पीछे हट जाएंगे, मगर उल्टा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा लिया हमारी शादी का। ये सुनकर सारा जोर जोर से हंसने लगी। हाय अल्लाह, आप भी ना। देखिए, अगर चाचू आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, तो इसका मतलब है कि वो आपसे सच में बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। आपके कितने बड़े दीवाने हुए हैं, आप ही तो हैं जो बेवजह गुस्सा करती रहती हैं। यकीन मानिए, वो आपको बहुत खुश रखेंगे। और हाँ, जब आप उनकी बीवी होंगी तो मैं आपको चाची जान कहकर पुकारूंगी। सारा ने उठकर जोया के गले में अपनी बहन डाल दी। ये सुनकर जोया गुस्से से खड़ी हो गई और सारा को धक्का देकर बोली, दूर हो मुझसे, बेकार की बातें मत करो। सारा फिर भी मस्ती में बोली, देख लेना, जिस दिन वो आपको अपनी बाहों में लेंगी आप खुद धक्का देना भूल जाएंगी। जोया ने खिड़की की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सारा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे जो मेरे भाई बहन होंगे, और आप देखना सब ठीक हो जाएगा, जोया ने गहरी आवाज में कहा। मैंने शर्त रखी है कि एक साल तक वो मेरे पास नहीं आएंगे। अगर उन्होंने मेरी सारी शर्तें निभाई तभी, मगर मैं जानती हूँ साल तो दूर की बात है, उनकी असली सूरत एक महीने में ही सामने आ जाएगी। चलिए, आपका मूड ठीक करते हैं, आज शाम हम सब मार्केट चलते हैं, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। और हाँ, पास ही एक पुराना किला है, मैं तो सोच ही रही थी वहां जाने की, आप भी साथ चलना, शायद आपका मन भी हल्का हो जाए। जारा और फिजा भी हमारे साथ चलेगी, सारा ने उत्साहित होकर कहा। जोया, जिसका मूड पिछले कुछ घंटों से बेहद खराब था, सचमुच कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है सारा, हम लोग शाम को किला देखने चलेंगे, तब तक आप आराम कीजिए, मैं जरा मॉम के पास होकर आती हूँ। ये कहकर सारा उठी और कमरे से बाहर चली गई। जो जोया सोच रही है, क्या वैसा ही होगा? जहाँ जोया अयान के प्यार को समझेगी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रेटिंग देना याद रखें। प्लीज कमेंट जरूर दिया करें, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है।